एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। तो आज हम गोता लगा रहे हैं सर एल्टन जॉन की बहुत ही ईमानदार और बेबाक आत्मकथा मी में। ये सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं है।
हाँ बिल्कुल नहीं, ये उस इंसान की कहानी है जो उस चमक दमक के पीछे छिपा था, रेजिनॉल्ड केनेथ ड्वाइट।
सही, एक ऐसा सफर जो चकाचौन से शुरू तो हुआ लेकिन मंजिल थी खुद को पाना, और वो भी आसान नहीं था।
आसान तो बिल्कुल नहीं, सोचिए 300 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड्स, 5 ग्रामी, 1 ऑस्कर, 1 टोनी, और तो और महारानी एलिजाबेथ से नाइटहुड, मतलब सर की उपाधि।
कमाल की उपलब्धियां हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, इन सबके पीछे का जो संघर्ष है वो इस किताब को खास बनाता है। ये सिर्फ जीत का जश्न नहीं है।
नहीं, ये उस भारी कीमत का भी एहसास कराती है जो चुकानी पड़ती है। अक्सर हम देखते हैं कि बाहरी सफलता ही सब कुछ है।
हाँ, मान लेते हैं हम, लेकिन ये किताब सवाल उठाती है कि क्या वो शोहरत, वो पैसा, वो अंदर के खालीपन को भर सकता है?
और एल्टन जॉन की कहानी दिखाती है कि शायद नहीं। मतलब बेहिसाब कामयाबी के साथ गहरा अकेलापन, नशे की लत, पहचान का संकट, ये सब साथ साथ चल रहा था।
और ये कहानी इसीलिए भी अहम है क्योंकि ये एक बदलाव की कहानी है। कैसे कोई अपनी सबसे मुश्किल आदतों, अपने गहरे जख्मों का सामना करके न सिर्फ बच निकलता है,
बल्कि एक ज्यादा सच्ची, ज्यादा संतुष्ट जिंदगी पा सकता है।
बिल्कुल, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक खुले तौर पर गे आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने उस जमाने में हिम्मत दिखाई जब समाज इतना खुला नहीं था।
सही कहा, और उनका जो परोपकार है, खासकर एड्स के खिलाफ उनकी लड़ाई, एल्टन जॉन एड्स फाउंडेशन, वो उनकी विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
तो अगर इस पूरी कहानी का, इस आत्मकथा का सार एक लाइन में कहना हो, क्या कहेंगे? इसका सेंट्रल आइडिया क्या है?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक ये है कि असली खुशी, सच्ची वाली खुशी, वो बाहर की दुनिया की तालियों या मंजूरी से नहीं आती। वो मिलती है अपनी कमजोरियों को हिम्मत से अपनाने में, अपनी असलियत को बिना डरे जीने में।
तो ये वो पब्लिक पर्सोना एल्टन जॉन और अंदर का इंसान रेजिनल्ड ड्वाइट के बीच की कश्मकश और फिर सुलह की कहानी है।
हाँ बिल्कुल, मुखौटे उतार फेंकने की कि कैसे वो दोनों आखिरकार एक हुए।
ये जानना दिलचस्प है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। ये जो शोहरत का तूफान था, ये भड़कीले कॉस्ट्यूम्स, इसकी जड़ें कहां थीं? शायद पिनर में, लंदन के पास।
हाँ वही, रेजिनाल्ड ड्वाइट का बचपन, माहौल काफी ठंडा था भावनात्मक रूप से। पिता स्टैनली ड्वाइट रॉयल एयरफोर्स में थे, काफी सख्त, आलोचना करने वाले, और बेटे से काफी दूर।
किताब में जिक्र है कि उन्होंने कभी एल्टन का कोई लाइव शो नहीं देखा।
हाँ, और ये बात एल्टन को हमेशा चुभती रही। माँ शीला फेयरब्रदर का रिश्ता भी पेचीदा था, कभी बहुत सपोर्टिव तो कभी अचानक बहुत कठोर। मतलब घर में वो प्यार और अपनापन, उसकी कमी साफ दिखती है।
यानी एक ऐसा घर जहाँ जज्बात दिखाना शायद मुश्किल था, और शायद इसीलिए वो बच्चा रिग, वो थोड़ा शर्मीला, अपने वजन को लेकर कॉन्शियस और इनसिक्योर महसूस करता था।
हाँ, और इसी अकेलेपन में, इसी खामोशी में उसे संगीत मिला, पियानो, वो उसका सहारा बन गया।
कहते हैं उनमें सुनकर धुन पकड़ने की गजब की काबिलियत थी।
अद्भुत। महज 11 साल की उम्र में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक की स्कॉलरशिप मिल गई, तो संगीत ही था जिससे वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाते थे या शायद उस माहौल से भाग पाते थे।
और शायद यहीं से वो अंदर एक गहरी इच्छा पैदा हुई मंजूरी पाने की, प्यार पाने की, जो बाद में उनकी पूरी जिंदगी पर एक तरह से हावी रही।
लगता तो यही है, बचपन की वो अधूरी जरूरतें अक्सर हमें बड़े होने पर भी चलाती रहती हैं अनजाने में।
फिर वो दौर आता है जब रेजिनाल्ड ड्वाइट एल्टन जॉन बनने की तरफ बढ़ता है, और इसमें सबसे बड़ा मोड़ तो 1967 में बर्नी टोपिन से मिलना था, है ना?
यकीनन, वो मुलाकात भी क्या किस्मत का खेल थी। लिबर्टी रिकॉर्ड्स का एक एड था, म्यूजिक चाहिए, लिरिक्स चाहिए, दोनों पहुंचे, उन्हें साथ काम करने को कहा गया, और बस
वहीं से शुरू हुई म्यूजिक हिस्ट्री की सबसे कामयाब और लंबी चलने वाली पार्टनरशिप्स में से एक।
और उनका काम करने का तरीका भी देखिए, बर्नी लिरिक्स लिखते, एल्टन मिनटों में धुन बना देते, अक्सर अलग अलग कमरों में बिना मिले।
कमाल की केमिस्ट्री।
हाँ, एक अनोखा तालमेल था। और इसी दौर में रेजिनाल्ड ड्वाइट ने अपनी नई पहचान बनाई, एल्टन जॉन।
ये नाम भी उन्होंने अपने पुराने बैंड के साथियों से लिया था, एल्टन डीन और लॉन्ग जॉन बॉल्ड्री।
बिल्कुल, और ये नाम फिर वो भड़कीला अंदाज, बड़े बड़े चश्मे, जगमगाते कपड़े, ये सब शायद उस शर्मीले रैग के लिए एक ढाल जैसा था।
हाँ, मंच पर शायद उसे वो कॉन्फिडेंस देता था जो असल जिंदगी में नहीं था।
शुरू में शायद यही था, लेकिन धीरे धीरे वो कवच, वो परसोना इतना बड़ा हो गया कि असली इंसान कहीं पीछे छूट गया। फिर आया 70 का दशक और एल्टन जॉन एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गए।
वो लॉस एंजल्स के ट्राबाडोर क्लब वाला परफॉर्मेंस 1970, कहते हैं वो तो जैसे धमाका था।
हाँ, रातों रात दुनिया बदल गई, लोग दीवाने हो गए। उसके बाद तो हिट्स की लाइन लग गई, योर सॉन्ग, रॉकेट मैन, टिनी डांसर, एल्बम्स जैसे एल्टन जॉन, हॉन्की शैटो, गुड बाय येलो ब्रिक रोड।
वो पॉप म्यूजिक के शिखर पर थे।
थे, लेकिन इस चमकती तस्वीर का एक दूसरा स्याह पहलू भी था। शोहरत अपने साथ लाई भयंकर स्टेज का डर,
और उसे दबाने के लिए शायद
कोकेन। हाँ, फिर धीरे धीरे शराब, बुलीमिया, वो ईटिंग डिसऑर्डर, बेहिसाब शॉपिंग की लत और उनके वो मशहूर नखरे।
वो किस्सा तो बहुत आम है जब उन्होंने होटल से फोन किया कि बाहर हवा तेज है, कुछ करो।
हाँ, ये दिखाता है कि वो हकीकत से कितने कट चुके थे। अपने मैनेजर और एक्स लवर जॉन रीड के साथ भी रिश्ता काफी तूफानी रहा। ऐसा लगता था जैसे एल्टन जॉन का किरदार धीरे धीरे रेजिनाल्ड ड्वाइट को निगल रहा है।
वो खुद मानते हैं इस बात को, किताब में कहते हैं कि उनका स्टेज पर सोना एक मॉन्स्टर बन गया था।
हाँ, तो 70 और 80 का दशक करियर के लिहाज से सुनहरा, पर निजी जिंदगी के लिए बहुत अंधेरा। सफलता चरम पर अंदर से वो टूट रहे थे।
इसी उथल पिथल के बीच 1984 में उन्होंने रेनेट ब्लॉयल से शादी की, जो चली नहीं।
हाँ, बहुत कम वक्त चली। वो खुद कहते हैं कि ये शादी उनके अकेलेपन से भागने और अपनी गे पहचान को नकारने की एक कोशिश थी।
फिर 1987 में गले की सर्जरी हुई जिसमें आवाज बदल दी, ये भी एक झटका रहा होगा।
बिल्कुल, और इसी दौर में एड्स महामारी फैल रही थी, उसका भी उन पर बहुत गहरा असर हुआ। उन्होंने कई दोस्तों को खोया इसमें।
रायन व्हाइट की कहानी ने उन्हें बहुत झकझोड़ा था, है ना?
हाँ।
वो टीनेजर जिसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV हुआ था।
हाँ, रायन की हिम्मत और समाज के रवैये ने एल्टन को अंदर तक हिला दिया, और शायद यही वो चिंगारी थी जिसने 1992 में एल्टन जॉन एड्स फाउंडेशन की शुरुआत करवाई।
ये उनके जीवन में एक नए मकसद की तरह आया।
बिल्कुल, इसके बाद द लाइन किंग का संगीत आया जो जबरदस्त हिट हुआ। उनकी दोस्तियां भी बड़ी थी, जॉन लेनन, प्रिंसेस डायना।
डायना के फ्यूनरल में उनका गाया कैंडल इन द विंड, वो तो इतिहास बन गया
सच में। और इन सारे उतार चढ़ावों में एक चीज हमेशा स्थिर रही, बर्नी टोपिन के साथ उनकी दोस्ती और साझेदारी।
तो आज जब हम एल्टन जॉन की विरासत देखते हैं, वो सिर्फ एक म्यूजिक आइकन नहीं है।
नहीं, वो एक बड़े मानवतावादी भी हैं। 300 मिलियन रिकॉर्ड, नाइटहुड, अवार्ड्स, ये सब एक तरफ और उनका फाउंडेशन का काम दूसरी तरफ, दोनों ही महत्वपूर्ण है।
अगर हम उनकी प्रेरक शक्ति को देखें, शुरू में क्या था जो उन्हें ड्राइव कर रहा था?
किताब पढ़ के लगता है कि शुरू में ये जबरदस्त इच्छा थी अपने माता पिता से, खासकर पिता से, वो मंजूरी पाने की, वो प्यार पाने की जो बचपन में शायद कम मिला।
तो क्या वो दुनिया भर के फैंस की तालियों में वही चीज ढूंढ रहे थे?
शायद। ये काफी दुखद लगता है ना, कि दुनिया का इतना बड़ा स्टार भी अंदर से एक बच्चा है जो अपने पिता की शाबाशी चाहता है।
लेकिन जब उन्हें लगा कि ये भारी सफलता वो खाली पर नहीं भर रही, तब क्या बदला?
तब उनकी तलाश बदली, वो बाहरी मंजूरी से हटकर असली बिना शर्त वाले प्यार और सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब आत्म स्वीकृति की ओर मुड़े। उन्हें समझ आया कि दूसरों के लिए जीना, अपनी असलियत छुपाना, कितना थका देता है, कितना नुकसानदेह है।
और यहीं से उनका जीवन दर्शन उभरता है कि प्रामाणिकता यानी अपनी सच्चाई के साथ जीना ही असली कुंजी है।
हाँ, व्यक्तिगत भी और कलात्मक भी। और नशे जैसी चीजें वो कोई नैतिक कमजोरी नहीं, बल्कि गहरे भावनात्मक दर्द का, पहचान के कन्फ्यूजन का लक्षण होती है।
और शोहरत का वो विरोधाभास कि वो आपको दुनिया में सबसे मशहूर भी बना सकती है और सबसे अकेला भी।
बिल्कुल। अच्छा, अगर उनके मूल्यों की बात करें, जीवन के दूसरे हिस्से में क्या चीजें ज्यादा मायने रखने लगीं?
सबसे ऊपर तो लगते हैं असली मानवीय रिश्ते, बनी टोपिन से दोस्ती, डेविड फर्निश के साथ उनका रिश्ता, उनके बच्चे। किताब में ये साफ है कि सच्ची खुशी और ठहराव इन्हीं से मिला। और दूसरा, दूसरों की सेवा, परोपकार। एड्स फाउंडेशन का काम उन्हें सिर्फ संतुष्टि नहीं बल्कि जिंदगी को एक मतलब देता है। और तीसरा, ये विश्वास कि इंसान किसी भी उम्र में बदल सकता है, एक नई शुरुआत कर सकता है।
रचनात्मक साझेदारी का महत्व तो है ही बर्नी टोपिन के साथ। और एक और चीज, जिम्मेदारी लेना।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। वो अपने अतीत से भागते नहीं, उसे स्वीकार करते हैं। मानते हैं कि अतीत बदला नहीं जा सकता, पर उसकी जिम्मेदारी ली जा सकती है। ये एक बड़ा सबक है।
उनकी जिंदगी में इतने मोड़ आए, अगर तीन सबसे अहम, सबसे निर्णायक मोड़ चुनने हों तो वो कौन से होंगे?
पहला तो बिना शक 1967 में बर्नी टॉपिन से मुलाकात।
हाँ, वो तो नींव थे।
बिल्कुल, एक विज्ञापन से शुरू हुई कहानी जिसने रेग ड्वाइट को एल्टन जॉन बनने का मंच दिया। उनकी वो अनोखी राइटिंग पार्टनरशिप और एक अटूट दोस्ती, ये उनके करियर और जिंदगी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
सही कहा। दूसरा?
दूसरा मेरे हिसाब से 1990 में उनका रिहैब जाने का फैसला।
अच्छा।
सालों की लत, कोकीन, शराब, बुलिमिया, भावनात्मक उथल पुथल, वो बिल्कुल कगार पर थे। रायन व्हाइट की मौत ने शायद उन्हें आखिरी धक्का दिया कि मदद लेनी ही होगी।
शिकागो के रिहैब सेंटर गए थे वो।
हाँ, और वो उनके लिए आसान नहीं था। किताब में वो बताते हैं कि कैसे आम लोगों की तरह रहना पड़ा, कपड़े धोना, बिस्तर बनाना, ग्रुप थेरेपी में अपने डर का सामना करना, ये जमीन पर वापस आने जैसा था।
तो ये सिर्फ लत छोड़ने से ज्यादा था?
हाँ, बहुत ज्यादा। ये उस एल्टन जॉन वाले भारी भरकम मुखौटे को उतारने की शुरुआत थी जिसके नीचे असली रेग ड्वाइट दबा हुआ था। ये पहली बार था जब उन्होंने हिम्मत से अपनी कमजोरियों का, अपने असली मैं का सामना किया।
आत्मविनाश से बचाव की ओर पहला कदम।
हाँ, और सबसे जरूरी कदम। वो खुद इसे अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला कहते हैं।
और तीसरा अहम मोड़,
वो था 1993 में डेविड फर्निश से मिलना और फिर पिता बनना।
डेविड फर्निश, वो उनके जीवन में स्थिरता लाए।
बिल्कुल, एक सच्चा साथी। उनका रिश्ता धीरे धीरे बना आपसी सम्मान और ईमानदारी पर। 2005 में सिविल पार्टनरशिप, 2014 में शादी और फिर सरोगेसी से दो बेटे, जैचरी और एलिजा।
पिता बनने के अनुभव ने उन्हें कैसे बदला?
इसने उन्हें वो दिया जिसकी उन्हें हमेशा तलाश थी, बिना शर्त वाला प्यार, अपनापन। वो कहते हैं कि इससे उनके बचपन के जख्म भरने लगे, दुनिया की मंजूरी की जरूरत कम हो गई।
क्योंकि घर में ही प्यार मिल रहा था।
हाँ, इसने उनके जीवन को एक नया केंद्र दिया, एक गहरा सुकून दिया जो शायद करोड़ों रिकॉर्ड बेचकर भी नहीं मिला था। इसने एल्टन जॉन को शांत किया और रेग को राहत दी।
एल्टन जॉन की कहानी है तो असाधारण, रॉक स्टारडम, दौलत, शोहरत, पर अगर हम थोड़ा गहराई में देखें तो बहुत कुछ ऐसा है जो हम सबके जिंदगी से जुड़ता है।
जैसे?
जैसे असुरक्षा की भावना, प्यार और स्वीकृति की चाह, अपनी पहचान खोजना, किसी लत से संघर्ष करना, मदद मांगने में हिचके जाना, ये सब तो बहुत मानवीय है ना?
हाँ, ये बात तो है। आजकल के दौर में जब सब एक परफेक्ट इमेज बनाने में लगे हैं, उनकी कहानी से क्या सीख सकते हैं?
कई चीजें। पहली तो यही कि बाहरी सफलता अंदरूनी खुशी की गारंटी नहीं है। पैसा और शोहरत सब कुछ नहीं होते।
बिल्कुल।
दूसरी, ये समझना कि हमारा अतीत, खासकर बचपन, हमारे आज को कैसे प्रभावित करता है। मतलब सेल्फ अवेयरनेस कितनी जरूरी है।
और तीसरी,
कि मुश्किल में मदद मांगना कमजोरी नहीं, हिम्मत का काम है।
और ये भी कि जिंदगी में कभी भी यू टर्न लिया जा सकता है, किसी भी उम्र में। दिशा बदल सकते हैं, खुद को दोबारा बना सकते हैं।
हाँ, और उनकी कहानी चुने हुए परिवार यानी फाउंड फैमिली के महत्व को भी दिखाती है। बर्नी टोपिन, डेविड फर्निश, ये वो लोग हैं जो खून के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत साबित हुए।
और आखिर में दूसरों की सेवा, किसी बड़े मकसद से जुड़ना, जैसे एड्स फाउंडेशन, ये जिंदगी को एक अलग ही मतलब देता है।
सही कहा। ये सारे सबक आज के भाग दौड़ में बहुत काम के हैं। ये कहानी दिखाती है कि अपनी सबसे बड़ी मुश्किलों से गुजरना ही हमें सबसे ज्यादा सिखाता है, जिंदगी को गहरा बनाता है। अपनी असलियत तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है, शोहरत पाने से भी ज्यादा।
इस पूरी बातचीत के बाद अगर हमें तीन मुख्य बातें निकालनी हो, एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक सार्वभौमिक, तो वो क्या होंगी?
भावनात्मक स्तर पर देखें तो सबसे गहली बात यही है कि इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत बिना शर्त प्यार और स्वीकृति है,
जिसे पैसा या शोहरत नहीं दे सकते।
बिल्कुल नहीं। असली रिश्ते, परिवार, जैसे एल्टन ने डेविड और अपने बच्चों के साथ पाया, वो बचपन के गहरे जख्मों को भी भर सकते हैं।
ये बहुत अहम बात है। और बौद्धिक स्तर पर?
बौद्धिक स्तर पर सबक यह है कि प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिक होना सिर्फ कहने की बात नहीं, ये जरूरी है। एक कामयाब लेकिन झूठे मुखौटे के पीछे जीना आखिरकार आपको तोड़ देता है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने पूरे वजूद को, कमियों और खूबियों समेत, अपनाते हैं। रेजिनल्ड ड्वाइट को स्वीकार किए बिना एल्टन जॉन अधूरे थे। खुद के प्रति ईमानदारी ही असली समझ है।
और अंत में वो एक सार्वभौमिक सबक जो सब पर लागू हो?
वो ये है कि बड़ा व्यक्तिगत बदलाव हमेशा मुमकिन है। कोई कितना भी नीचे क्यों ना गिर गया हो, लत या निराशा में कितना भी क्यों ना डूबा हो, हाँ, सुधार को चुनना, मदद मांगना और अपना ध्यान विनाश से हटाकर सेवा, क्रिएटिविटी और सच्चे रिश्तों की ओर लगाना एक बेहतर, ज्यादा संतुष्ट जीवन की ओर ले जा सकता है। एल्टन जॉन की कहानी इसी उम्मीद और हिम्मत का सबूत है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।